हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना ने आदित्य का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसे स्टडी रूम के दरवाजे से लेकर अपने साथ सीढ़ियों की तरफ ले गई और इतनी बहस के बाद आदित्य ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे, देखता मैं रह गया। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में तुम, आँखों में तुम, पहली नज़र से ही यारा। ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में तुम, आँखों में तुम, पहली नज़र से ही यारा। सुनैना अपनी जीत की खुशी में मुस्कुराते हुए आगे आगे चल रही थी। वो सोच रही थी कि आज वो और आदित्य साथ में खाना खाएंगे। शादी के बाद से ये पहली बार होगा। ना चाहते हुए भी वो काफी ज्यादा उत्साहित, खुश और स्पेशल महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के मन में भी कुछ इसी तरह की हलचल चल रही थी, लेकिन वो अपने मन के इन सब जज्बातों को पता नहीं क्यों अपने चेहरे पर आने से रोक रहा था। और इसी तरह एक साथ चलते हुए वे दोनों सीढ़ियां उतरकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गए। वहां चेयर के पास पहुंचकर आदित्य उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो ना, अब तुम्हारा ही घर है। हाँ पता है मुझे, पर हाथ तो छोड़ो पहले। इस तरह से ले आई, फ्रेश भी नहीं होने दिया। कम से कम हाथ तो धो लेने दो खाना खाने से पहले, काम कर रहा था मैं। सुनैना के इस तरह से बोलने पर आदित्य ने उसका ध्यान अपने पकड़े हुए हाथ की तरफ करते हुए कहा, ओ सॉरी, ठीक है, तुम हाथ धो लो जाकर, मैं जब तक गीता दी के साथ खाना लगवाती हूँ टेबल पर। आदित्य के इस तरह से बोलने पर सुनैना ने सॉरी बोलते हुए जल्दी से आदित्य का हाथ छोड़ दिया और अपने बाल कानों के पीछे करते हुए खुद किचन की तरफ भाग गई। और उसके इस तरह से करने पर आदित्य उसके जाने के बाद खुलकर मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, सो क्यूट शी इज। और फिर नीचे सबसे साइड वाले रूम के वॉशरूम में हाथ धोने के लिए चला गया। और जब तक आदित्य फ्रेश होकर वापस डाइनिंग टेबल पर आया, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। सुनैना एक चेयर पर बैठी हुई थी और गीता उसके पास ही खड़ी थी और उसकी प्लेट में खाना सर्व करने में मदद कर रही थी। बोल रही थी कि अकेले खाना खाने का मन नहीं करता और यहाँ मेरे आने से पहले ही शुरू हो गई। आदित्य ने सुनैना के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए उसकी प्लेट की तरफ देख कर कहा, अरे तो अभी कहाँ खाना मैंने, और ये तो मैं तुम्हारे लिए ही सर्व कर रही थी, ये लो। बोलते हुए सुनैना ने अपने सामने रखी प्लेट आदित्य की तरफ बढ़ा दी। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर गीता ने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। मैं किचन में हूँ भाभी, कुछ और चाहिए तो आवाज़ लगा दीजिएगा मुझे। सुनैना की तरफ देखकर ये बोलते हुए गीता वहाँ से चली गई। ठीक है, ये सब और अभी कुछ नहीं चाहिए, सुनैना ने गीता की बात का जवाब देते हुए कहा और फिर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में भी खाना निकालने लगी। आदित्य सामने वाली चेयर पर बैठकर चुपचाप डिनर कर रहा था और बीच बीच में चोर नजरों से सुनैना की तरफ देख रहा था, जब सुनैना का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी और सुनैना की नज़र मिलती, वो वापस से इधर उधर कर लेता था। सुनैना ने एक दो बार ये बात नोटिस भी की और उसे आदित्य का इस तरह से छुप छुप कर प्यार से उसे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने भी इस बात के लिए आदित्य से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसी तरह मुस्कुराती हुई डिनर करने लगी। वो तो आज इतने में ही खुश थी कि आदित्य ने उसकी बात मानकर उसके साथ डिनर किया था। हाँ, उसे अपने उन बाकी सारे सवालों के जवाब भी चाहिए थे जो सिर्फ आदित्य के पास ही थे, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती थी इन सब के लिए और धीरे धीरे करके आदित्य को समझना चाहती थी। दूसरी तरफ नैना गूगल मैप पर देखती हुई उस एड्रेस वाली लोकेशन पर कैब से पहुंच गई, लेकिन उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा नजर आ रहा था। वो एक बड़ा सा बंगलानुमा घर था जो कि ज्यादातर फिल्मों और सीरियल की शूटिंग के लिए यूज होता था, क्योंकि इस तरह के घर सुनैना कई सारी फिल्म और सीरियल में देख चुकी थी, जिसे कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखाते थे। नैना कैब से बाहर निकली तो उसने टाइम देखा कि 6 बजने में 5 या 10 मिनट ही बाकी थे, इसलिए उसने जल्दी से कैंप वाले को पैसे दिए और उस बंगले के मेन गेट से अंदर की तरफ आने लगी। उसके मेन गेट पर कोई वॉचमैन भी नहीं था, इसलिए सुनैना सीधा अंदर की तरफ जाने लगी। यहाँ पर स्क्रीन टेस्ट है, बाहर से देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से कोई यहाँ पर नहीं आया मेरे अलावा, लेकिन हो सकता है अंदर सेटअप लगाया हो और यहाँ पर तो शूटिंग होती ही रहती होगी। थोड़ी सी डरी हुई नैना ने खुद को तसल्ली देकर समझाते हुए ये बात बोली और फिर दरवाजे के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी के नंबर पर कॉल कर लूं क्या जिसका कॉल आया था दिन में? मेन गेट से अंदर की तरफ बढ़ते हुए नैना मन ही मन खुद से कहा और तब तक घर के अंदर जाने वाले दरवाजे तक पहुंच गई। अपना मोबाइल फोन निकालने से पहले नैना ने घर के दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि वो अंदर से लॉक नहीं था। अंदर की तरफ देखने पर सच में वहां उस जगह को किसी शूटिंग स्टूडियो की तरह ही सजाया गया था। जगह जगह पर बड़ी बड़ी फ्लैशलाइट्स, कैमरे और बाकी सारा प्रोडक्शन और फिल्म शूटिंग का सामान रखा हुआ था। साथ ही नैना को वहां पर अपने अलावा 3-4 लड़कियां भी दिखाई दीं, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसके साथ ही कुछ कास्ट और क्रू मेंबर्स भी थे वहां पर। चलो कोई तो नजर आया, पर इतने सारे लोगों में मैं किससे बात करूं? और उस दिन उस स्टूडियो की क्रू मेंबर की वो लड़की कितनी ज्यादा रूड थी मेरे साथ, ये सारे लोग भी वैसे ही हुए तो? नैना ने उस दिन वाली बात याद करते हुए कहा जब वो बेहोश हो गई थी और फिर उस लड़की ने उसके बेहोश होने को भी नाटक कहते हुए उसे काफी उल्टा सीधा सुनाया था। वो बात याद आते ही नैना की वहां पर किसी से भी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए वो अपना मोबाइल फोन निकालकर उस नंबर पर कॉल करने लगी जिससे कि उसे दिन में कॉल आया था। वहां पर बाकी सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जिनमें से कुछ नैना को अजीब सी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरकर देख रहे थे तो कुछ उस पर बिना ध्यान दिए ही चले जा रहे थे। सांबा, हेलो मैडम, आपको 6 बजे तक यहाँ पहुँचना था और आप अभी तक कॉल कर रही हैं। अगर आपको ये काम नहीं चाहिए तो फिर हम किसी और को फाइनल कर लेते हैं। नैना का कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से उस आदमी ने सीधे ही ये बात बोली, अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ लेकिन आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे और किसी को मैं यहाँ पहचानती नहीं। आप देखिए उस तरफ मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ, ब्लैक जीन्स और रेड व्हाइट टॉप पहना हुआ है मैंने। उस आदमी के इस तरह से बोलने पर नैना समझ गई कि वो आदमी उसे चेहरे से नहीं पहचानता है, इसलिए ही ऐसे बोल रहा है। तो नैना ने अपना हुलिया उसे फोन पर बताते हुए उससे कहा, अरे हाँ दिख गई, आप मुझे रुकिए आप, मैं आता हूँ उस तरफ ही, बोलते हुए उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्रमशः